ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम से पाठ छठा स्कंध अध्याय 17 माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को साप। इस अध्याय के आज 38 नंबर श्लोक। यज्ञे तोष्टुहु दक्षिणाग्नौ दानवीं योनिम् आश्रितः वित्रः इति अभिविख्यात ज्ञान विज्ञान संयुतः। यज्ञे तोष्टुः दक्षिणाग्नौ दानवीं योनिम् आश्रितः वित्रः इति अभिविख्यात ज्ञान विज्ञान संयुतः। शब्दार्थ यज्ञे उत्पन्न हुआ, तोष्टुः तोष्टा नामक ब्राह्मण का, दक्षिण अग्नौ दक्षिणाग्नि नामक यज्ञ की अग्नि में, दानवीं आसुरी, योनिम योनि आश्रितः शरणागत, वित्रः वित्रः इति इस प्रकार, अभिविख्यात विख्यात ज्ञान विज्ञान संयुत, जीवन के दिव्य ज्ञान तथा व्यावहारिक ज्ञान से युक्त। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ माता दुर्गा भवानी शिव जी के पत्नी से शापित होकर उसी चित्रकेतु ने आसुरी जोनी में जन्म लिया। वह तोष्टा द्वारा किए गए यज्ञ से असुर के रूप में प्रकट हुआ। यद्यपि वह दिव्य ज्ञान और उसके व्यावहारिक उपयोग में अभी भी परिपूर्ण था और इस प्रकार वह वृत्रासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोहराइए, माता दुर्गा से शापित होकर उसी चित्रकेतु ने आसुरी जोनी में जन्म लिया। वह त्वष्टा द्वारा किए गए यज्ञ से असुर के रूप में प्रकट हुआ, यद्यपि वह दिव्य ज्ञान और उसके व्यावहारिक उपयोग में अभी भी परिपूर्ण था। और इस प्रकार वह वृत्रासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तात्पर्य, योनि का सामान्य अर्थ जाति अर्थात परिवार समूह या किस्म समझ जाता है, समझा जाता है। यद्यपि वृत्रासुर असुरों के परिवार में उत्पन्न हुआ, किंतु उसका आध्यात्मिक ज्ञान तब भी बना रहा। ज्ञान विज्ञान संयुक्त, उसका दिव्य ज्ञान तथा जीवन में उस ज्ञान का व्यवहार उसे भूले नहीं। अतः यदि किसी कारणवश भक्त स्युत होता है तो भी वह नष्ट नहीं होता। जत्र को वा भद्रम अभूत मनुष्य किं को वा अर्थ आप तो अभचतां स्वधर्मतः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद की 5वें अध्याय के 17वें श्लोक। एक बार भक्ति में सिद्ध हो जाने पर किसी भी दशा में उसकी आध्यात्मिक निधि का क्षय नहीं होता। वह जितना भी आत्मज्ञान अर्जित कर चुका होता है वह बना रहता है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है। यदि कोई भक्ति योगी भ्रष्ट हो जाता है तब वह संपन्न परिवार में या ब्राह्मण परिवार में जन्म ग्रहण करता है और वहाँ वह फिर से अपनी भक्ति के कार्यकलाप जहाँ उसने छोड़े थे वहाँ से प्रारंभ कर देता है। वृत्रासुर भले ही असुर कहलाता हो किंतु उसका भी कृष्ण भावना या भक्ति विनष्ट नहीं हुई थी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति सोपदान्तिकं। वंदे अहं श्री गुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमः महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यज्ञे तुष्टुः दक्षिणाग्नौ दानवीं योनिमाश्रितः वृत्रः इति अभिविख्यात ज्ञान विज्ञान संयुतः। माता दुर्गा से शापित होकर उसी चित्र के तुने आसुरी जोनि में जन्म लिया। वह तोष्टा द्वारा किए गए यज्ञ से असुर के रूप में प्रकट हुआ। यद्यपि वह दिव्य ज्ञान और उसके व्यावहारिक उपयोग में अभी भी परिपूर्ण था और इस प्रकार वह वृत्रासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो महाराज ने वृत्रासुर के साथ जो इंद्र की इंद्र और वृत्रासुर के युद्ध पहले चर्चा हो चुकी पहले अध्याय में, तो उसी युद्ध में हमें देखे कि वृत्रासुर के राक्षस जो नहीं राक्षस के शरीर में है और देवराज कौन है इंद्र, लेकिन युद्ध के बीच में उन्होंने भगवान की स्तुति कर रहा है। कौन? किसी राक्षस की ऐसा वृत्ति नहीं होता है। भगवान विष्णु को कभी वो स्तुति नहीं करते। राक्षस और देवता में यही अंतर है, देवता लोग भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं और ये राक्षस लोग कोई भगवान विष्णु के शरण में नहीं जाते। लेकिन ये एक अद्भुत राक्षस है, ये भगवान युद्ध के बीच में युद्ध स्टॉप करके इंद्र को उपदेश दे रहा है, क्योंकि इंद्र भयभीत हो गया। ये इंद्र को उसका घोर इसके हस्ती के ऐरावत के साथ ही निकल लिया। कौन? वृत्रासुर। इंद्र तो देखा कि इसके साथ क्या युद्ध करूंगा, बड़ा भयभीत हो गया, बोला मेरा बजर बजर काम नहीं करेगा इसके बारे लगता है। तभी वृत्रासुर युद्ध बनकर उसको समझा रहा, किसको? इंद्र को। चिंता मत करो इंद्र, तुम्हारे वज्र भगवान के द्वारा निर्देशित होकर उनकी सलाह देकर दधीचि मुनि के तपस्या की जो शरीर है उस शरीर से बना हुआ ये निश्चित रूप में मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। तुम प्रयोग करो इसको, प्रयोग करके मेरे ऊपर देखो, भयभीत मत हो। और उसी के बीच में वो भगवान की बहुत सुंदर स्तुति कर रहा है। नौनाक पृष्ठं न च परमेष्ट्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर् पुनरुद्भवं वा समञ्जसत्वा विरहस्य कांखे। कौन कह रहा? वृत्रासुर कह रहा युद्ध के बीच में। हे समस्त सौभाग्य के स्रोत भगवान, मुझे न तो ध्रुवलोक में न स्वर्ग में अथवा ब्रह्मलोक में सुख भोगने की इच्छा है और न ही मैं समस्त भूलोक अथवा अधोलोक का सर्वोच्च अधिपति बनना चाहता हूँ। मैं योग सिद्धियां का स्वामी भी नहीं बनना चाहता, नहीं आपके चरण मैं तो केवल आपके चरण कमल नहीं आपके चरण कमल का त्याग कर मुख्य की कामना करता हूँ। मेरे एकमात्र अभिलाषा मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवताद भक्ति हेतु की। जो परीक्षित महाराज श्लोक को सुने सुखदेव गोस्वामी से कहे कि बाहरे ये कैसा संभव है कि राक्षस ध्वनि में ये विशुद्ध भक्ति की शिक्षा कैसे ये दे सकता है, इसके रहस्य क्या है? कई श्लोक है सुंदर श्लोक वृत्रासुर के, इसलिए सिद्धोर स्वामी कहते भागवत पुराण को पहचानने का एक लक्षण यह है कि जिस पुराण में वृत्रासुर की उपाख्यान की वर्णन की गई है, जिस श्लोक में वैष्णव की महिमा जिस पुराण में वर्णन की गई है, शंकर जी ने वृत्रासुर की महिमा को कहते हुए पार्वती को कहते हैं प्रसिद्ध श्लोक इतने प्रसिद्ध श्लोक फेमस श्लोक याद नहीं रहे क्या जोर से नहीं 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 शंकर जी ने कहते हैं किसको? पार्वती को। भगवान विष्णु की भक्तों की महिमा को देखो कैसे ये श्लोक क्या है? नारायण स्परा सर्वे न बिभ्यस्यति कश्चन स्वर्ग अपवर्ग नरकसु अपि तुल्यार्थ दर्शिना है, इसे प्रसंग में कहा गया। तो इसलिए वैष्णव की महिमा जिस पुराण में बताया गया है ये स्वर्ग अपवर्ग नरक ये कुछ सबको समान देखते हैं, वैष्णव में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नरक जगह कहीं भी जाने के लिए तैयार रहते हैं। इनके एकमात्र क्या इच्छा होता है, भगवान नारायण की सेवा करना है। नारायण परास और न विभिषे को कभी भी विचलित नहीं होते, बाकी से भयभीत भी नहीं रहते है। स्वर्ग अपवर्ग नरक सोपी तुल्यार्थ समान दृष्टि में देखते हैं, क्योंकि जहां जाता भक्त जहां जाता वो नरक रहता ना क्या, भक्त जो नरक में पहुंचता वो नरक रहेगा है। जमराज भयभीत रहते, कोई नारद मुनि आगे कहते कि थोड़ा मैं नरक का परिदर्शन करना चाहता हूँ, थोड़ा विजिट करना चाहता हूँ नरक। नहीं नहीं नारद जी, आपके लिए वो स्थान नहीं, आपको क्यों जाना है, कि जमराज जाते हैं सारे बेकार चले जाएगा, सर जितने परिश्रम से बेकार हो जाएगा, किसके लिए, इतने जो जमदूत जाकर सावधानी से पकड़ी सबके लेके आए, और नारद मुनि बिना बजाते हुए यदि भगवान के नाम संकीर्तन करके नरक में घूम परिक्रमा कर लेंगे तो क्या होगा, ये सारे नरक से उठ के सीधा भगवत धाम पहुंचेगी। हरिनाम शुद्ध शुद्ध नाम को श्रवण करके ही शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त की मुखारविंद से है। तो इसीलिए सब भक्त का कोई भयभीत नहीं होता है, वैष्णव भयभीत नहीं होता है, है? वो स्वर्ग का स्वर्ग में जाए नरक में जाए वह मुक्ति प्राप्त करे या न करे, उस में चिंतित नहीं रहता। तो इस प्रकार गुणशाली व्यक्ति रुद्रासुर को मुख से ये शुद्ध भक्त की लक्षण को देखकर वो कहते कैसे संभव हुआ हे राम। तभी इसलिए ये शोक की कहने के बाद तुरंत सुखदेव गोस्वामी कहते कि हे राजा परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था कि परम भक्त रुद्रासुर ने असुर वंश में किस प्रकार जन्म लिया, अतः मैंने तुम्हें उसके विषय में सब कुछ बताने का प्रयास किया है, अभी बताया संक्षेप में बता दिया। इस श्लोक तक वही वर्णन आ रहा था कैसे कि महाराज चित्रकेतु किस प्रकार रुद्रासुर के शरीर में आए। तभी आज के इसी प्रसंग में आज के जो ये श्लोक है यज्ञ, यज्ञ सबसे पहले श्लोक का जो शब्द आता है यज्ञ, यज्ञ का अर्थ, यज्ञ का अर्थ क्या है यहां पर लिखा गया, लेकिन प्रकृति में हम यज्ञ को ही कहता है, यज्ञ चल रहा है। अब क्या सोचते हैं है? यहां कह रहे कि यज्ञ का अर्थ प्रभुपाद जी अर्थ करते उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये अर्थ प्रभुपाद जी ने अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ये अर्थ उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के टीका से कर रहे हैं है? जोनिम जात जातिम है? जोनिम अर्थ जातिम, यज्ञ का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में लिखते हैं जोनिम व यातिम जातिम है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने भी लिखे कि उत्पन्न हुआ है? जोनी का सामान्य अर्थ जाति, प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं जोनी का सामान्य अर्थ जाति, अर्थात परिवार समूह का किस्म समझा जाता है। यद्यपि रुद्रासुर आसुर के परिवार में उत्पन्न हुआ, किंतु उसका आध्यात्मिक ज्ञान बना रहा है, वो सदा भगवान को स्मरण करना सबसे बड़ा वैष्णव के लिए घातक कौन सा चीज है, यदि कोई इसको अभिशाप दे देते कि तुम भगवान को भूल जाओ, इससे बड़ा अभिशाप कोई नहीं होता। लेकिन यहां पर ये विषय नहीं दे, राक्षस तो नहीं चला गया, क्या हो गया है, है? भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि पशु पक्षी हो था के स्वर्गे वानी रे तब भक्ति रहु भक्ति बिनोद हृदय। अरे प्रभु, पशु पक्षी जोनि में क्यों चले न जाऊं, उसके लिए मेरी चिंता नहीं है, लेकिन आपकी भक्ति सदा मेरी हृदय में जैसे बने रहे, भक्त चाहता है। अरे पक्षी जोनि में रहेगी यदि मैं भगवान की भक्ति कर सका, जटायु जैसे गिद्ध की जोनि में, गरुड़ जैसे पशु पक्षी की जोनि भगवान की करियर है, गिद्ध की जोनि में रहकर भी मैं यदि रामचंद्र जी की सेवा में शरीर को लगा सका, हाँ जटाई को अंतिम संस्कार कौन किया, भगवान स्वयं के, इससे बड़ा भाग्यवान कौन हो सकता है, हाँ? भगवान अपने को आपको पिता तुल्य उसको सम्मान प्रदान किया है। तो इसलिए पशु ऐसे पक्षी की जोनि में चले जाने से क्या होता है, यदि कोई जब जटायु जैसे गिद्ध की जन्म में होते हुए भी भगवान की महान भक्ति की है, बंदर की जन्म में रहकर कौन हनुमान जी है, और जाम्बवान भालू की जोनी में है, तो ऐसे अन्य अन्य पशु पक्षी की जोनी में चले जाने से क्या नुकसान है? यदि में भगवान आपकी भक्ति में लगे रहो, पशु पक्षी हो ही था कि स्वर्गे बने रहो, मैं स्वर्ग में रहूं नर्क में रहूं इसमें और चिंता नहीं है, तब भक्ति रहू भक्ति विनोद हृदय, आपके चरण के शुद्ध भक्ति सदा मेरे हृदय में मैं धारण करके रखूं। तो इसलिए वृत्रासुर भी ऐसे ही कोटि के भक्त है, उसको कोई चिंता नहीं है। जब इसको माता पार्वती ने अभिशाप दे दिए कि राक्षस योनि में चले जाओ हैं, और तुरंत अपने विमान से उतरे, दिव्य विमान से उतर कर आए, माताजी कहकर अपने सिर झुका कर उनके चरण में प्रणाम किए, उनके चरण चरण रज को सिर में धारण किए, कहे माताजी आपके अभिशाप मैं स्वीकार कर लिया है। आचार्य लोग कहते कि इनकी तो शक्ति था, पाता जैसे वो अभिशाप दिया ये वो अभिशाप दे सकते थे, ये कोई साधारण नहीं थे, जो महाराज चित्रकेतु ये भी उनको अभिशाप दे सकते, क्योंकि भगवान शंकर सन के साक्षात दर्शन करके ही कर चुके थे, और भगवान शंकर जी के आराध्य कौन है? शंकर जी। तो इसलिए ये तो दोनों का अपने माने गॉड ब्रदर जैसे मानते एक ही इष्ट के दोनों भक्त है, इसीलिए चित्रकेतु ने थोड़ा उपहास कर दिया, किसको? शंकर जी को। शंकर जी तो समझ गए भाव को, इसलिए वो मुस्कुरा दिए कुछ बोले नहीं है, लेकिन माता पार्वती इसको सहन नहीं कर पाई है। तो इसलिए ये अभिशाप प्राप्त ने अभिषेक को स्वीकार किए, और उसी प्रसंग में ही वैष्णव की महिमा को वर्णन करते हुए शंकर जी ने दांते किसको? पार्वती को है? तो इसी प्रकार मात ये कहते कि यज्ञ तोष्टु, तोष्टा नामक ब्राह्मण का, तोष्टा कौन है? हैं, तोष्टा कौन? ये शब्द श्लोक में आ रहा है, तोष्टा शब्द तोष्टु, ये यज्ञ किसकी यज्ञ से उत्पन्न हुआ ना? तोष्टा ने, तोष्टा ने नामक ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहा था से दक्षिणाग्नि से उत्पन्न हुआ। तोष्टा कौन है? विश्वरूप के पिताजी बोल रहे हैं। विश्वरूप कौन है? तोष्टा का लड़का है। ये प्रसंग कहां से कि तोष्टा माने, आप जानते हैं देवता लोगों की गुरु कौन है? बृहस्पति। और उनका यज्ञादि बृहस्पति के पुरोहित में किया जाता, तो अभी ये तोष्टा कैसे आ गया, मैंने तोष्टा कैसे आ गया? ने तोष्टा विश्वरूप, विश्वरूप यज्ञ के पुरोहित थे, बड़े उनको वर्णन किए थे देवता लोग ने, क्योंकि एक बार यज्ञ बने इंद्र में, आप इंद्र ने बड़े थाट बाट में अपने सभा में बैठे हुए थे हैं, और सभी लोग बैठे, बड़ा सम्मान हो रहा था, डांसिंग चल रहा था, बड़ा उर्वशी जैसे महान सब देखने व्यस्त थे, तो इतनी बड़े राजसभा के अंदर हठात कौन प्रवेश कर गया? इसके गुरु बृहस्पति प्रवेश किए, और उठ के अपने आसन से खड़ा होकर सम्मानित नहीं किया है, प्रणाम तो दूसरे बात को, वैसे ही अपने बोला आ गया ठीक है वैसे। तो बृहस्पति समझ गए, इसके मन में अहंकार आ गया, बृहस्पति तुरंत घूम के चल गए, चले गए पूरा छोड़ के, स्वर्ग छोड़ के अंतर अंतर ब्राह्मण को कोई क्या जरूरत है? तो इसलिए इंद्र बाप में ढूंढे देवता लोग को और मिले नहीं कौन, इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा जी की सलाह लेकर कि पुरोहित के बिना एक गुरु के बिना कैसे वो चलेगी, कैसे स्वर्ग चलेगा कैसे, इसलिए उन्होंने विश्वरूप, तोष्टा का पुत्र है विश्वरूप, विश्वरूप को पुरोहित बनाने के लिए सलाह दी। तो इसलिए विश्वरूप का आप जानते, बाद में इंद्र ने मार डाला था उसको, सब वो कहानी तो सुने हम, विश्वरूप को यज्ञ में बैठा था, लेकिन विश्वरूप का ये पिताजी थे तोष्टा, तोष्टा तो देवता था, यानी माताजी राक्षस कुल से थी, इसलिए कहता था कि इंद्राय स्वाहा, जोर से इंद्र बात में आस्ते से कह देता था, हिरण्यकशिपु स्वाहा है, यज्ञ में यज्ञ भाग देवता राक्षस को भी देता था, तो इसी को इंद्र को पता चल गया, इसलिए वही यज्ञ स्थल पर उसको मार डाला। देखो गुरु बनाया था और उसी को मार डाला। तो इसीलिए उसके पिताजी यह है तुष्टा, विश्वरूप के पिताजी तुष्टा, इसलिए क्रोध में वो उसका बदला लेना चाहा मेरी पुत्र का, या पुत्र का बद्ध का, इसलिए उन्होंने यज्ञ करके दक्षिणाग्नि नामक यज्ञ का संस्थापन करके यज्ञ में आहुति देने लगा। इसलिए कहते हैं यज्ञ तुष्ट हो तुष्ण ब्राह्मण का दक्षिणाग्नि, दक्षिणाग्नि नामक यज्ञ की अग्नि में। इसलिए तुष्टा विश्वरूप, तुष्टा तुष्टा और वृत्रासुर का क्या, मैंने जो क्या जब वृत्रासुर बना बाद में, वृत्रासुर का क्या संपर्क है, क्या संपर्क हुआ भाई है, क्योंकि भाई का सब कहा किसका भाई हुआ, विश्वरूप का है, विश्वरूप का पिताजी है ना तुष्टा। तो इसलिए ये दक्षिण अग्नि में वो यज्ञ कर रहा था, आहुति दे रहा था, किसके लिए आहुति दे रहा था, यज्ञ किसके लिए कर रहा था, किसको मारने के लिए, इंद्र को वध करने के लिए चाहता था कि यज्ञ अग्नि से ऐसा एक व्यक्ति उत्पन्न हो, हाँ इंद्र शत्रु हो, हाँ जो इंद्र के शत्रु बन के उसको वध कर सके। लेकिन वो यज्ञ आहुति देते देते उसकी मंत्र उच्चारण में गलत आ गया, संस्कृत उच्चारण क्या हो, क्या शब्द आया, राधानाथ पंडित बैठे उधर संस्कृत पंडित, तुष्टा इंद्र शत्रु विवर्धन, वो थोड़ा सा शब्द उच्चारण में गलत कर दिया, अर्थात इंद्र का इंद्र के शत्रु से उत्पन्न हुआ, लेकिन जो इंद्र को वध करने वाला जगह पर क्या हो गया, जो इंद्र के द्वारा मारा जाएगा, उच्चारण हो गया तो गलत, इसलिए वृत्रासुर उत्पन्न हुआ। इसलिए कहते तुष्टो दक्षिणाग्नि दानविन ज्योनि में आश्रित, इसलिए जो जन्म हुआ उसी यज्ञ से पार्वती के द्वारा अभिशप्त होकर महाराज चित्रकेतु वही वृत्रासुर के शरीर धारण करके है, उसी दक्षिणाग्नि से दक्षिणाग्नि नाम के जो यज्ञ दावा ने दानविम ज्योनि में आश्रित वह राक्षस शरीर को प्राप्त करके ही वही यज्ञ से प्रकट हुए। द्रुतः इति अभिविख्यात है, बड़े प्रसिद्धि प्राप्त किया, विख्यात हुआ रुद्रासुर के नाम से। लेकिन राक्षस ज्वनि को प्राप्त होकर भी साधारण राक्षस लोग ज्ञान विज्ञान संयुक्त नहीं होते हैं, वो आध्यात्मिक ज्ञान में संयुक्त नहीं होते हैं, वो तो स्वयं को भगवान बनना चाहते हैं, सिद्ध अहम ने बलवान सुखी है, ईश्वर अहम अहम भोगी सिद्ध अहम बलवान सुखी, कौन राक्षस लोग कैसे सोचते हैं। लेकिन ये वृत्रासुर ऐसे राक्षस नहीं थे, ये तो कैसे निकले न ज्ञान विज्ञान संयुक्त, जीवन के दिव्य ज्ञान तथा व्यावहारिक ज्ञान से युक्त थे ये वृत्रासुर, इसलिए इसी प्रकार यज्ञ से उत्पन्न हुआ। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि कोई भी भक्त ऐसे प्रसंग में जानना चाहिए कि जिस जो व्यक्ति भक्ति में परिपुष्ट हो गया, एक बार भक्ति करके ही शुद्ध भक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लिया है, शुद्ध भक्त बन गया है, फिर उसको किसी भी स्थिति में भक्ति और दोबारा फिर नष्ट नहीं हो जाता है, भक्ति को कोई संबोले नष्ट नहीं कर सकता, भक्ति का बीज उसके शरीर में उसके अंतकरण में पड़ा रहता है, सभी के अंदर में सुप्त अवस्था में है, लेकिन जो शुद्ध भक्ति की एक बार सिद्धि स्थिति को प्राप्त कर लिया है तो पर भक्ति नष्ट नहीं होता है, चाहे शरीर की भिन्न भिन्न क्रिया के अनुसार अन्य शरीर प्राप्त हो सकता है, जैसे यहाँ पर पार्वती की अभिशापा के वैसे ही उसको राक्षस ज्वनि में प्राप्त हो गया, लेकिन भक्ति नष्ट नहीं हुआ किसकी, भगवान सब समय, भगवान जो कहते कि जोगो खेमंग वहा में हम, ये जोगो खेम क्या ग्रहण करते हैं, भक्ति अनन्य चिंतमान योजना पैपाशते तेषांग नित्य भियुक्तानंग जोगो खेमंग वहा में हम, कोई सोचे कि हमारा घरवाड़ी राज्य वो तो बाहर, ये जमींदारी भगवान का ज्यादा नहीं है। भगवान की असली जमींदारी क्या है? भक्ति का ही सदा वो रक्षा करते हैं, भक्त का भक्ति को नष्ट नहीं होने देते। इसी को योगक्षेम भाव में हम, इसके योगक्षेम यही है। शुद्ध भक्ति जो एक बार प्राप्त कर लिया है वो तो शुद्ध भक्ति कभी नष्ट नहीं होते हैं। एक बार भक्ति में सिद्ध हो जाने पर किसी भी दशा में उसकी आध्यात्मिक निधि क्या क्षय नहीं होता है। तो भगवद गीता के 6 अध्याय में भगवान भी कहते हैं, यदि कोई योगी भक्ति योगी भक्ति करते करते किसी कारण से सिद्ध है, एक जन्म में भी नहीं हो पाया, 90% भक्ति करके 10% के लिए रुक गया, नहीं कर पाया सिद्ध, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया, इसलिए भगवत धाम जाने में इसको थोड़ा रुकावट आया, लेकिन भगवान कहते कि सुचिरांग सीमतांगे है जोग भ्रष्ट अभिजायते, फिर भी इस प्रकार व्यक्ति को किसी सूची संपन्न परिवार अथवा ब्राह्मण परिवार में उसको जन्म मिलता है। नहीं तो और यदि अधिक इससे यदि और आगे बढ़ गए 95% 97% हो गया, 2-3% के लिए नहीं जा पाया, तो फिर उसका क्या होता? अथवा भक्त घर में उसकी जन्म होता है। ऐसे कैटेगरी के लोग कौन है? श्रील प्रभुपाद, ये तो ऐसा नित्य सिद्ध है, लेकिन कभी के उदाहरण दे, जो कभी भक्त होता है 2-3% जो है उसको, उसका जन्म साधारण भक्त के परिवार में होता है, किसी महान भक्त के परिवार में है, भक्ति विनोद ठाकुर की लड़का के रूप में, गौर मोहन की लड़का के रूप में, कोई महान शुद्ध भक्त के घर में जन्म लेता है, उसको जन्म से ही शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त होता है। ये जीवन में सबसे बड़ा दुर्लभ क्या चीज है? शुद्ध भक्तों की संगति है। क्या श्लोक? तुलयाम अलवेनापि नो स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत भक्ति भगवत भक्त भक्त भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम की मुताशीष। मर्त्यवासियों के लिए इससे और कोई मूल्यवान चीज क्या है? तुलयाम, इसका तुलना नहीं की जा सकती है। लभेनापि, एक लब एक निमेश को, निमेश जो गिरता है एक उसका 11 भाग से एक भाग इतने सूक्ष्म समय में है, लव एक इतने सूक्ष्म समय के संग किसके साथ? एक शुद्ध भक्त की संगति। न स्वर्गम, स्वर्ग प्राप्ति के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। न पुनर्भवम, मुक्ति प्राप्त करने के साथ भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। भगवत संग, भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम की मुताशीष, भगवत संगी जो होते हैं उनके संग इतने सूक्ष्म समय संगति करने से भी जीवन सफल हो जाता है। तो इसलिए जो 90 थोड़ा सा भक्ति करे 2-3% के लिए नहीं जा पाता, तो उसको ऐसा ही जन्म से ही साधु की संगति प्राप्त होता है। क्योंकि साधु की संगति कैसे प्राप्त होता है? सत्संग प्राप्त ने भक्ति, भक्त संग ने उपजाया थे, भक्ति की संगति में ही भक्ति के जन्म होता है। लेकिन भक्त की संगति कैसे प्राप्त होगा? सत्संग प्राप्यते पुंग भी सुकृति पूर्व संचित ही, पूर्व जन्म की सुकृति जो संचित होता है उस सुकृति के बल पर यही फिर कर्मन्मुखी सुकृति, ज्ञानमुखी सुकृति और भक्तिन्मुखी सुकृति। कौन सा सुकृति के बल पर भक्ति मिलता है? सुकृति भी 3 प्रकार के होते हैं, कर्मन्मुखी, ज्ञानमुखी, कर्मकांड के माध्यम से, कर्मकांड यज्ञ करके कोई सुकृति कुछ अर्जन करता है। ज्ञानकांड, ज्ञान के माध्यम से ज्ञानोन्मुखी सुकृति, कम से कम उनको मोक्ष प्राप्त करने की जिनको इच्छा होती है, लेकिन वो तपस्या भी करते हैं, वो भी सुकृति है। और भक्तिन्मुखी सुकृति, 3 प्रकार की सुकृति, कौन सा सुकृति श्रेष्ठ है? भक्तिन्मुखी सुकृति है। ऐसे ही भक्तिन्मुखी सुकृति में एकादशी माधवती थी, भक्ति जननी जतने पालन करी है, ये भक्तिन्मुखी सुकृति है। एकादशी व्रत, नृसिंह चतुर्दशी, अभी पुरुष तो महीना के जो आप व्रत रख रहे हैं, जो हाँ, ये कौन सा सुकृति है? ये भी भक्तिन्मुखी सुकृति है, भगवान पुरुषोत्तम के चरण में शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली है। ये मंत्र का और कुछ नहीं है, इसलिए कर्मकांडी लोग क्या कहते हैं इसको, कर्मकांडी ज्ञानकांडी कहते हैं। अरे ये छोड़ो, ये बेकार है, कुछ देने वाला नहीं है। इस महीना में यदि कुछ भी करोगे क्या मिलेगा? भक्ति मिलेगा, भगवान की भक्ति करो। जो कुछ करते तो केवल भक्ति में, कुछ वो इंद्रिय तृप्ति की वस्तु मिलने वाला नहीं है। जैसे वो नवद मायापुर में था, वो क्या जोगपीठ एक मुसलमान के अंडर में था, तो वो जो भी बीज फेंकता था वो क्या होता था? तुलसी उगता था। तुलसी पे कहा ये पुरुषोत्तम मास में जो भी कुछ करोगे, जो सुकृति कुछ करोगे तो आपको भक्ति मिलेगा। इसलिए कर्मकांडी लोग तो बेकार, हमको भक्ति नहीं, हमको इंद्र तृप्ति की वस्तु चाहिए, क्या इसमें देने वाला नहीं है। तो इसलिए भक्तिन्मुखी सुकृति की बल पर ही जो भक्तिन्मुखी, जब जैसे एकादशी व्रत, नृसिंह चतुर्दशी व्रत कोई अज्ञान से भी कर लेगा उसको शुद्ध भक्ति मिल जाएगा। है कि प्रहलाद महाराज पूछते नृसिंह देव को, हरिभक्ति विलास में भी इसको वर्णन की गई है पद्म पुराण से उद्धृत करके, पुस्तक की गोद में बैठकर नृसिंह महाराज, नृसिंह भगवान की गोद में बैठकर प्रहलाद पूछ रहे थे, प्रभु मैं राक्षस कुल में हिरण्यकशिप के पुत्र रूप में जन्म होकर भी आपकी चरण कमल की चरण में ये शुद्ध भक्ति कैसे किया, तो कैसे मुझे आपकी शुद्ध भक्ति प्राप्त हुआ, मैं कैसे? नहीं, ये तो तुम पूछ रहे हो क्यों, तुमको पता नहीं तुम कैसे मिला, क्योंकि नारद मुनि की कृपा से है। लेकिन नारद मुनि के संग मुझे कैसे मिला राक्षस कुल में ऐसे? तभी नृसिंहदेव कहते हैं, स्वयं कहते कि देख प्रहलाद, पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण के पुत्र था, सात ब्राह्मण के सात पुत्र थे, सबसे छोटा पुत्र का नाम था वासुदेव, तुम ही वही था। लेकिन ये छह पुत्र तो बहुत अच्छे कर्म करते थे, छोटा वाला पुत्र क्या करता था? शराब पीने वाला था, स्त्री संगी शराब सब प्रकार के कुकर्म में लिप्त रहता था, तो वही पूर्व जन्म में तू था। इसीलिए तो बाप एक दिन ने देखा कि तू तो रास्ता में चढ़ते हुए बेसिया के हाथ पकड़कर शराब का बोतल पकड़ चल रहा था, तो घर से आने से सारे भाई बाप मिलके निकाल दिए, घर में तेरे अधिकार नहीं, भाग यहां से, पूरे निकाल दिए। और जिस संबंधी के पास गया सब संबंधी लोग घुड़ा करने लगे, हताशा होकर जंगल में घुस गया, भूखा प्यास रहकर दिन भर ऐसे ही जंगल में घूमते रहा। घूमते घूमते शाम के समय हो गया, एक सुंदर झरना के पास पहुंचा था, इसलिए झरना में स्नान किया और देखा कि उस झरना कुल में एक पीपल वृक्ष, बहुत सुंदर वृक्ष था, तो वहीं पर बैठकर जो विपद आता तो विपद में क्या कर है, कोई सुख में स्मरण है कोई करता है? नहीं, सुख में स्मरण कोई ना, क्या वो कहते हैं, दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे ना कोई है। दुख हो गया तो थोड़ा सा तेरी स्मरण भी हो गया, मेरे चिंतन किया है, एक दो बार मेरे नाम भी ले लिया और आंख से अश्रु भी गिरा दिया, दिन भर तो भूखा रहा और मच्छर काटे तो उस दिन भी, रात्रि जागरण भी ऐसे ही हो गया। लेकिन दैव जोग से ये मेरा ही व्रत की दिन था। कौन सा दिन? नृसिंह चतुर्दशी व्रत। नृसिंह चतुर्दशी व्रत, इसी नृसिंहदेव कब मारे थे नृसिंहदेव कब मारे थे इसको हिरण्यकशिपु को, ये पुरुषोत्तम मास में नृसिंहदेव को, उसको वरदान था, पहले जो गया चला गया कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, वो मथुरा में नृसिंह मंदिर में अभिषेक हुआ है, वहाँ दिन उसी दिन अभिषेक हुआ है, उसी दिन मारे थे, क्योंकि तो 12 महीने में नहीं मरेगा, उसको वरदान था 12 महीने में मरेगा नहीं, कौन हिरण्यकशिपु, चलिए भगवान इसको पुरुषोत्तम मास मारते हैं। तभी तो इसलिए कह के, इसलिए भगवान कहे कि नृसिंहदेव कहे कि देख, तो इसलिए अज्ञात से मेरी नृसिंह चतुर्दशी व्रत है, इसलिए पद्म पुराण कहे कि नृसिंह चतुर्दशी व्रत आजकल के नहीं है, हिरण्यकशिपु मरने के बाद नृसिंह चतुर्दशी व्रत नहीं होता, पहले से अनादिकाल से है, वैशाख ने वैशाख जो व्रत है, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी जो व्रत नृसिंह चतुर्दशी है वो अनादिकाल से है। इसलिए हरित मुनि और लीलावती की कहानी बता गया पद्म पुराण में, हरित मुनि और ललिता लीलावती के ही पुत्र के रूप में भगवान वो नृसिंह बाल नृसिंह रूप में प्रकट हुए थे उनकी गोद में। तो इस प्रकार, तो इसलिए नृसिंहदेव कहे कि देखो प्रहलाद तुझे अज्ञान से ऐसे ही व्रत मेरी व्रत धारण कर लिया था, ये अज्ञान सुकृति के बल पर क्या हुआ, तुझे नारद जी जैसे संत का संग प्राप्त हो गया है। सत्संग प्राप्यते पुण्य भी सुकृत ही पूर्व संचित ही, पूर्व जन्म की सुकृति से सत्संग प्राप्त होती है, सत्संग ऐसे नहीं मिल जाता, बहुत दुर्लभ है। भजहुरे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार विंदरे, कैसे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगी तरहुरे भव सिंधुरे। इसलिए इस प्रसंग आज देखिए श्लोक में कि किस प्रकार ये बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी तो बताए के कहे कि क्योंकि उसका पूर्व इतिहास बता रहे किसकी, वृत्रासुर की है। वृत्रासुर क्यों, वृत्रासुर राक्षस जोनि में होकर भी इसे महान भक्ति को कैसे धारण करके रखा है, तो इसी प्रसंग में ही चर्चा की गई है। भिन्न भिन्न आचार्य लोग ने अपना टीका भी लिखते हैं। ज्ञान अभिज्ञान संयुक्त द्रुत ज्ञानी अभिविख्यात दानविंग जोनिंग आश्रित त्वष्ट दक्षिणग्न यज्ञ। श्रीधर स्वामी कहते कि तत्र भगवत प्रभावात ज्ञान विज्ञान संयुक्त एव जात है, ये ज्ञान विज्ञान संयुक्त कैसे बना राक्षस होकर, यानी भगवत प्रभाव से, भगवान के प्रभाव से भक्ति क्या उसी के प्रभाव से राक्षस योनि में होने पर भी इस ज्ञान विज्ञान संयुक्त है। इस श्लोक में लास्ट शब्द ज्ञान विज्ञान संयुक्त होकर जन्म लिया। अजीव गोस्वामी कहते कि महत अनुग्रह भागवत भगवान भागवत मत है कारण महत अनुग्रह, ये जो विशेष भक्ति किया इसका कारण क्या है, महत अनुग्रह है। क्योंकि महत अनुग्रह के बिना कोनो कर्म, चैतन्य महापुरुष कहते कि है भक्ति कोनो कर्म न है, महत अनुग्रह बिना भक्ति कोनो कर्म न है। कृष्ण भक्ति दूर रहू आय संसार न है क्या है, कृष्ण भक्ति के दूर की बात है हमारा जो आसक्ति संसार के प्रति ये भी हटने वाला नहीं है। आय संसार के प्रति हमारे आसक्ति कैसे छूटेगा, ये महत अनुग्रह होने से है। इसलिए इनको महत अनुग्रह हो चुका है, किसको किसका अनुग्रह से ये भक्ति प्राप्त किए, वृत्रासुर के ने महाराज चित्रकेतु, इनको कौन अनुग्रह क्या, नारद मुनि अंगिरा नारद है, नारद मुनि अंगिरा मुनि चित्त इनके पास आए हैं, तो उनकी अनुग्रह हुआ इसलिए भगवान की कृपा हुई, शंकरसन की महान भक्ति किए। हाँ अरे महत अनुग्रह जिसको की माध्यम से जो भक्ति प्राप्त हुई, भक्ति कभी नष्ट नहीं होने वाला, चाहिए वो किसी भी जोनि में चले जाए, अपने बाह्य कर्म की बात आधार पर जो कुछ हो, लेकिन भक्ति सदा उसके हृदय में बना रहता है, यही हमारा अभिलाषा है। भक्ति भक्ति मन ठाकुर कहते हैं यही अभिलाषा, चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में यही शिक्षा देते हैं है? मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवतात भक्ति रहेतु कीर्तुई है, भक्ति ही साधु संग और भक्ति, साधु संग में ही भक्ति है, साधु संगे हरि कथा बा हरि हरि नाम यही मात्र चाहिए, जगत जीनीते आर कौन वस्तु नहीं, भक्तिमान ठाकुर कहे और जगत में कोई इससे कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है, साधु संग में रहकर साधु संग केवल हरि नाम करना है, भागवत श्रवण करना, हरि नाम करना, बस भागवत श्रवण करे तभी तो हरि नाम की महिमा पता चलेगा, भागवत नियमित श्रवण करने से ही हमको ऐसे ही महान भक्तों के प्रसंग सुनने मिलेगा, भागवत नियमित श्रवण करने से ही हमको पता चलेगा नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनम, अंतिम श्लोक भागवत का है, वही भागवत पढ़ने से ही हम पता चलेंगे कड़ो कड़ो दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संघ परम प्रजेत है। भागवत में ही इसको बता गया, इसीलिए भागवत पढ़ते हैं, इसीलिए कहते कि हरिनाम के श्रवण कीर्तन और भागवत श्रवण कीर्तन में कोई अंतर नहीं है। श्रवण कीर्तन के आचार्य कौन है? परीक्षित महानी श्रवण का परीक्षित श्रवण करते थे, कीर्तन करते थे सुखदेव गोस्वामी हैं, बस यही श्रवण कीर्तन के आचार्य है। तो इसलिए नियमित रूप से हम भागवत की कक्षा में भागवत के श्रवण करने से ही हरिनाम की महिमा, भक्तों की महिमा और कैसे हम शुद्ध भक्ति में बना रहेंगे, ये सब रहस्य हमको अवश्य प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। समय हो चुका है, कोई किसके प्रश्न है? कोई एक दो प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी की कोई प्रश्न है? क्या डॉक्टर साहब बोलो, कुछ पूछना चाहते लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं। बोलो, माइक दो, माइक। इसको सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में कोट करते हैं, पद्म पुराण से वर्णित हैं, ये कोई स्पेकुलेशन करके नहीं कहा जाता है। जो स्पेकुलेशन में ऐसे तो है, प्रहलाद महाराज नित्य पार्षद है किसके? नृसिंहदेव। कुछ लोग कहते हो तो नृसिंह लोग के सर नृसिंहदेव के साथ अभी भी है न कहा, लेकिन फिर भी ये मरते लोग में जब आते हैं विड़ा में हैं, तभी फिर लोगों को शिक्षा देने के लिए अपनी आचार्य प्रभु जीबेरे सिखाए। भगवान किस लिए आते हैं? सिखाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, आज स्वयं आचरण करके सिखाने के लिए। बद्ध जीवों को कैसे भगवत धाम जाएंगे, इनको सिखाना कैसे सिखाएगा कौन है? सिखाने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सो पार्षद सियो धाम सहवतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। वो हमारे लिए उदाहरण प्रस्तुत करके ये सब कहानी कहने से हमें इसको सुन के फिर भक्ति में जुड़ेंगे है। अब भगवान जो लीला करते हैं बद्ध जीवन के साथ नहीं करते हैं। भगवान का कोई भी लीला, कोई भी पास्ट टाइम्स कंडीशन सोल के साथ नहीं होता है। कौन कौन लीला में भाग लेगा है? चैतन्य वहां पर इतने पार्षद सब नित्य सिद्ध है, नित्य सिद्ध करी माने श्री कृष्ण है गौरांगेर संगी गणे अनुसिंहदेव के साथ जो आता हो वह कोई भी पास्ट टाइम से जो आता है। यहां तक विजय गोस्वामी कहते भागवत में जितनी भी नाम लिखित की गई है, चाहे वह जाम्बिल हो या प्रहलाद हो हिरण को, वो कोई भी बद्ध जीव नहीं है। ये लोग यदि बद्ध जीव होते हैं उनकी कथा पास्ट टाइम सुन के हम मुक्त होते हैं, बद्ध जीव की कहानी सुन के हम मुक्त नहीं होते हैं। ये सब मुक्त जीव है, केवल एक्टिंग करके हमको सिखा रहे हैं और आचरण कर हम इसी को पढ़ के इस कथा को फिर हम है। कोई बद्ध जीव की चरित्र कहानी श्रीमद् भागवत में वर्णन नहीं होता है, है? समझ रहे? ओके हाँ उनकी क्या गति होता है तो बता रहे ना, सूचना सूचनांग सीमतांग है जो कल भ्रष्ट हो जा रहे थे। किसी ब्राह्मण परिवार में, किसी धनाढ्य वैश्विक परिवार में जन्म लेगा हाँ? शुद्ध भक्ति नहीं, सुचिनांग सीमतांग है जो भ्रष्ट अभी जाए थे। इसकी बात श्लोक कहता कि इससे भी आगे यदि कोई है तो फिर वो धीमतांग एवं ऐसा जीवन जन्म बहुत दुर्लभ है। ठीक है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।